जिन लोगों के यहाँ पहले ही सखावत का जज्बा पाया जाता है और उस पर अमल पैरा है वो मुबारक लोग हैं, लेकिन जिनके यहाँ ज़रा बुखल पाया जाता है या जिनके यहाँ ये जज्बा नहीं है कि वो लोगों के काम आए माली एतबार से, उनको इस महीने में कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे बढ़कर अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को अल्लाह की खातिर, अपने खालिक के कायनात की खातिर कोशिश करें कि उनके साथ तआवुन करें। ये तआवुन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि रमज़ान में ऐसा होना चाहिए, बल्कि हकीकत यह है कि आम जिंदगी में भी अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि हम अपने पैसों में से, अपने रिस्क में से, अपनी कमाई में से, जो अल्लाह ही की तरफ से दी हुई है, हम अपने साथियों में खर्च करें। खर्च करने का ये मुतालबा सबसे पहले अल्लाह ताला ने अजीजों के लिए किया है। जो हुस्ने सलूक में तरतीब थी, हमने पिछले दिनों इस मौजू पर गुफ्तगु की है, वही तरतीब यहाँ खर्च करने के मामले में है। हम इसको पहले एक बुनियादी अहकाम के तौर पर पढ़ चुके हैं, जहाँ हमने ये जाना था कि अदल, एहसान और बंदों को ऊपर अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करना, ये बुनियादी नेकियां हैं। वहाँ हमने इसका कुछ तसव्वुर समझा था। आज हम इसके कुछ अमली पहलुओं को देखेंगे कि इन्फाक किन पर करना है, तरीका क्या है, और कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फाक का सत्यानाश कर देती हैं। हमने पैसा ज़ाया कर दिया, हमने अल्लाह की राह में खर्च किया लेकिन बर्बाद हो गया। तो पहली चीज़ ये जान लीजिए कि जो एहसान के अंदर हमने रिश्तेदार और गैर रिश्तेदारों और पड़ोसियों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के बारे में जाना था, ठीक उन्हीं के बारे में यहाँ पे अखराजात करने का हमें हुक्म दिया गया है। यानी अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम अपने अजीज़ों पे खर्च करें, हम अपने हमसायों पे खर्च करें, हम अपने पड़ोसियों पे खर्च करें, हम यतीमों के ऊपर खर्च करें, और वो लोग जो अपने शहर से आए हुए हैं, खा वो अपने घर में अमीर कबीर हों, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका माल असबाब लुट गया है, वो मुसाफिर हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारी जेब में से कुछ निकलना चाहिए ताकि ये लोग सहूलत के साथ अपने घरों में जा सकें। तो ये पहला जो बात है वो ये जान लीजिए कि इन मददात में हमने खर्च करना है। अल्लाह ताला ने एक और बात ये फरमाई है। आमतौर से हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि मांगने वाले को, ये पेशावर लोग हैं, इनको क्या देना है, लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल इसके बरक्स दूसरा तसव्वुर हमारे सामने रखा है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि फी अमवालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, वो जो मांगने के लिए आ जाए उसका भी इनके माल में हक है, और जो हकीकत में महरूम है लेकिन मांगने नहीं आया उसका भी इनके माल में हक है। तो इन दोनों को देना है। आपके पास नहीं है तो सलीके के साथ माजरत कर लीजिए, धक्के ना दीजिए, गाली ना दीजिए, दुत्कारिए नहीं, लेकिन अगर आपके पास है और आप दे सकते हैं तो फिर आपको देना होगा। ये साइल व महरूम का हक है जो हमारे मालों में है। इसी तरह एक हक अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है जिसको ज़कात के नाम से हम जानते हैं कि ये साल ब साल या पैदावार के लिहाज से हर पैदावार पे उशर की सूरत में हमें देना होता है। इसी तरह हमारे यहाँ एक गलत तसव्वुर आजकल बहुत मशहूर हो गया, बल्कि हिंदुस्तानी माशरे की वजह से हमारे यहाँ ये तसव्वुर कुछ पुख्ता है बहुत ज़्यादा, कि सदका और खैरात कोई दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सदका उस वक्त दिया जाता है जब मुसीबत आ जाए और खैरात तो आम चीज़ है। ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है, ना ये तसव्वुर इस्लाम के मुताबिक है कि कोई काले रंग का बकरा हो, कोई उसकी सिरी हो या कुछ इस तरह का चीज़ें, ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। इस्लाम की रूह से यानी कुरान मजीद और हदीस के मुताबिक सदका, खैरात, जक़ात असल में एक ही चीज़ें हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना, और कुछ चीज़ें फ़र्ज हैं, कुछ नफल है। सदका और खैरात आम तौर से नवाफिल खैरात के लिए बोला जाता है, लेकिन जो फ़र्ज खैरात है या फ़र्ज़ अल्लाह की राह में अदा करना है अपने माल में से, उसको ज़कात कहा जाता है। इसके अलावा कोई इस्लाम में सदके और खैरात की कोई किस्म नहीं है। दो ही किस्में हैं, एक फ़र्ज और एक नफल। नफली तौर पर हम आम दिनों में खर्च करते हैं, अपने भाई को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, कोई मांगने आ गया उसको दे दिया, ये नफल होगा। और जो साल ब साल या उशर के कायदे पर जब हमारी कोई प्रोडक्शन आए अपने कारोबार में से, अपने खेत में से, अपने फैक्ट्री में से, उसके ऊपर जो हम देते हैं ये उशर होगा, ये फ़र्ज है। तो ये दो मुतालबात हैं, यानी फ़र्ज और नफल। दीन के अंदर ये अमूमी मुतालबा है अल्लाह ताला का कि कुछ चीज़ें मैंने मुकर्रर कर दी हैं जो लाजमन करनी है, हमें नमाज पढ़नी है, उसके फ़राइज़ हैं, रोज़ा रखना है, उसके फ़राइज़ हैं, हज भी एक दफ़ा फ़र्ज है। इनके अलावा कुछ अल्लाह ताला कहते हैं कि मन ततवा, जिसने अपनी तरफ से इजाफी तौर पर कुछ किया तो अल्लाह ताला उसको भी कबूल करते हैं, और उसको अजर बढ़ाने का जरिया बनती हैं ये चीज़ें, दर्जात की बुलंदी का जरिया बनती हैं, और जो फ़र्जों में कोताही रह गई होती है उसको पूरा करने का जरिया बनती हैं। تو یہ خیرات ہمیں کرنی ہے. صدقہ اور خیرات ایک ہی چیز ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی غریب کو دینا، مانگنے والے کو دینا، یا محروم آدمی کو دینا جو مانگنے نہیں آیا اپنی عفت کی وجہ سے، اپنے سفید پوشی کی وجہ سے، تو اس کو ہم اللہ کے نام پہ چپ کر کے، خاموشی سے، چپکے سے، جیسا بھی چاہیں دے سکتے ہیں. خیرات کے اندر پسندیدہ تو یہی ہے کہ اعلان نہ ہو، یعنی آپ چھپ کر کریں، خفیہ طریقے سے کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر نیت صالح ہو تو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ خفیہ کریں یا اعلانیہ کریں، دونوں ہی درست ہیں. لیکن نیت اگر صالح ہے، اگر نیت ریاکاری کی ہے تو ضائع ہو جائے گا، اگر نیت ہی کچھ اور کرنے کی ہے، اس سے کام لینے کی ہے، تو ضائع ہو جائے گا. تو یہ چیز سامنے رکھیے کہ اگر نیت درست ہے تو طریقہ کوئی بھی ہو، اعلانیہ ہو، خفیہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، قبول ہوگا. اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ نیت کیا ان سے درست ہے. نیت کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ دو نیتیں ہیں جو خیرات اور صدقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے درست قرار دی ہیں. ایک یہ کہ ہم اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے گناہ جھڑ جائیں، یہ ایک نیت ہوتی ہے، یہ بالکل درست ہے. دوسری یہ ہے کہ جس کو قرآن کا تثبیتا لانفسکم، ہم صدقہ خیرات اس لیے بھی کریں کہ ہمارے اندر استحکام پیدا ہو، ہماری شخصیت مضبوط بنے، ہمارا کردار بلند ہو، ہمارے اندر اچھے اوصاف پیدا ہوں، تو یہ نیت بھی درست ہے. گویا دینی تربیت کے لیے کوئی نیکی کرنا اس نیت کے ساتھ، یہ بھی درست ہوگا. اور اس نیت کے ساتھ کوئی عمل کرنا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی بالکل درست ہے، اس سے بھی ہمارے اعمال ضائع نہیں جائیں گے. تو یہ جو چیزیں، دو نیتیں اپنے کسی بھی نیک عمل میں ہم کر سکتے ہیں، اپنے نفس کے ضبط کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے، یہ بالکل درست نیتیں ہیں. لیکن ریاکاری اور اس طرح کی نیتیں غلط ہو جائیں گی. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خیرات ہم کرتے ہیں، یہ کن کن وجوہات سے ضائع ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے باتوں میں ریاکاری کو جانا. تو ریاکاری یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا اس کو دکھانے کے لیے، یا نمازی کہلوانے کے لیے، یا بڑا سخی کہلوانے کے لیے، یا مجاہد کہلوانے کے لیے کوئی نیکی کا کام کریں، تو یہ ریاکاری ہے. اس سے عمل غارت ہو جاتا ہے، نہ صرف غارت ہو جاتا ہے، یعنی ایک تو ہے کہ اس کا ضائع چلے جانا، کہ ایک ہم نے عمل کیا ضائع ہو گیا، ثواب نہیں ملا، یہ کم نقصان ہوا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ ہمیں عمل بھی ضائع گیا، اور دوسری مصیبت یہ آن پڑی کہ گناہ بھی ہو گیا. تو ریاکاری کے اندر گناہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آدمی کسی دوسرے شخص کو اللہ کی جگہ بٹھا دیتا ہے کہ میں اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں. اصل میں ہمیں عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، یہی اس کا حق ہے. اس حق کی جگہ ہم دوسرے بندے کا حق رکھ دیتے ہیں کہ جناب میں نے یہ فلاں صاحب کے لیے عمل کیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ میں نمازی ہوں، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ میں پرہیزگار ہوں، تاکہ وہ یہ جانے کہ میں بڑا مجاہد ہوں. تو یہ ہم نے اصل میں اس شخص کو خدا کی جگہ رکھ دیا. تو دو گناہ ہو گئے، ایک یہ کہ ہم نے ریاکاری کی اور ہم اپنا عمل ضائع کر دیا، اور دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے ریاکاری کی اور دوسرے شخص کو خدا کا حق دے دیا. تو اس طرح سے ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے عمل سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے، اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ الٹا عذاب ہوگا ریاکاری کی وجہ سے. ایک تو یہ سب سے بری نیت ہے. اس لیے اکثر حدیثوں میں اور دوسری جگہوں پہ ریاکاری کے اوپر بہت زور آیا ہے، کیونکہ یہ آدمی کو نہ صرف عمل ضائع کر دیتی بلکہ موجب گناہ بھی ہے. دوسرا پہلو جو خیرات کو ضائع کر دیتا ہے، وہ احسان جتانا ہے. مثلا آپ نے اپنے بھائی کو 10 روپے دے دیے، اب ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں میں نے 10 روپے دیے تھے، دوسرے بھائی کو بتا دیا میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے، یار میں نے کل تمہیں 10 روپے دیے تھے اور تمہیں اتنا نہیں ہوا کہ میرا آگے کام کر دو. یہ جتانے کا جو طریقہ ہے، احسان جتانے کا، یہ بھی آپ کی صدقہ و خیرات کو غارت کر دے گا، برباد کر دے گا. اور اس میں بھی جو اذیت اس کو ہوگی آپ کے بار بار جتانے سے، اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا، اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی. تو اس سے بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ چیز کہ ہم ایک نیکی کریں پھر جتائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی کو قرآن میں دوسری جگہ اذیت کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ ہم اذیت دیں، یعنی اس کو بار بار چڑھائیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے تمہاری مدد کی. یہ اذیت دینا بھی اس نیکی کو ضائع کر دے گا. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اگر آپ اس کے بدلے کام لے لیں، مثلا آج آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، ذہن میں تھا کہ کل میں اس سے ذرا گلی صاف کروا لوں گا یا اپنے دروازے پر یہ کام کروا لوں گا، تو وہ اصل میں مزدوری ہو گئی، وہ اب صدقہ خیرات نہیں رہی، اس سے بھی ضائع ہو جاتی ہے. اس کو ضائع ہونے کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھے آدمی کی مثال سے سمجھایا ہے کہ ریاکاری کر کے، اذیت دے کر، احسان جتا کر اور اس طرح کا کام لے کے اپنے رزق، اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو، उसकी मिसाल उस शख्स की सी है कि जो बूढ़ा हो और उसने बड़ी मेहनत से बाग लगाया हो, उसको फल लगने का टाइम आ गया, लेकिन ऐन बुढ़ापे के वक्त जब उसके बच्चे छोटे हैं अभी और वो जाने वाला है दुनिया से, तो एक तेज आंधी आई, तूफान आया और बिल्कुल राख करके चली गई उसको। तो इस आदमी की मिसाल वो है कि जिसने नेकी की और ऐन उस टाइम पे जब कबूलियत को पहुंचने वाली थी उसने रियाकारी कर दी, ऐन उस टाइम पे जब कबूलियत को पहुंचने वाली थी उसने अपना एहसान जताकर या उसके काम लेकर या उसको अजियत देकर उसको ज़ाया कर दिया। तो ये सामने रहना चाहिए कि सदका और खैरात एक बहुत बड़ा नेकी का अमल है, लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों से उसको ज़ाया कर देते हैं। और जितने अपने खास तौर से मुलाजमीन के साथ जो हमारा तावन होता है उसमें ये वाज़े रहना चाहिए कि उनकी तनख्वाह है जो हम देते हैं वो भी अदल इंसाफ के मुताबिक होनी चाहिए, उनके काम, उनकी मजदूरी, उनकी मेहनत, उनके टाइम के लिहाज से उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि हमारे माशरे में ये बहुत ज़ालिमाना किस्म की तनख्वाहें मुकर्रर होती हैं जो खास तौर से घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनको उनकी मजदूरी जायज़ मजदूरी नहीं मिलती, इसके ऊपर एहतियात करनी चाहिए क्योंकि कल पकड़े जाएंगे। लेकिन इनके साथ साथ हम क्या करते हैं कि तनख्वाह थोड़ी देते हैं फिर उनको एहसान उनके ऊपर रखने के लिए कुछ ना कुछ देते दिलाते रहते हैं कि ये लो भाई ये तुम्हारे वो आएगा जी, मेरी बेटी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मैंने ये करना है वो करना है, तो हम एक बड़ा अपना ऊपर हाथ रखने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं। इससे क्या होगा कि वो हमेशा हमारा मरहूने मिन्नत रहेगा, काम करता रहेगा। तो ये भी आपकी इस नेकी को जो आप अब कर रहे हैं नेकी नहीं रहने देगा। असल में आपने क्या किया, अपने मुलाजम को अपने काम पर राजी रखने के लिए और ज्यादा काम लेने के लिए खुश रखा हुआ है, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, जो आप तावुन करेंगे उसके साथ खलूस नीयत के साथ वाकई इसलिए कि अल्लाह ताला उसको कबूल करे तो इंशाल्लाह वो कबूलियत पाएगा। तो ये चीज सदका और खैरात के बारे में जान लेनी चाहिए कि ये बहुत नाजुक चीज भी है एक पहलू से। हर नेकी ही ऐसी है, ऐसा नहीं कि कोई नेकियां हमारी रियाकारी से या जताने से जाया नहीं होती, मुजाया हो जाती हैं। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि हम तमाम नेकियां इन सारी आलाइशों से पाक होकर, इनको आफात कहते हैं कि एक आफत लगी और चीज जाया हो गई, इन आफात से बचाकर हम अपनी नेकियां करें और पूरे दयानतदारी के साथ खुदा के साथ, जिसको कुरान मजीद कहता है खालिसन लिल्लाह या मुखलिसीन लहुद्दीन, कि अल्लाह के लिए बिल्कुल खालिस इताअत को करते हुए कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं किसी और के लिए नहीं, ये चीज जब हमारे अंदर आएगी तो ये सदका और खैरात बड़ी ही काम की चीज है। एक तरफ ये हमारे दिलों के अंदर उतर के हमारे अंदर इस्तेहकाम, ताकत, किरदार की पुख्तगी पैदा करती है और दूसरी तरफ हमारे अंदर उतर कर खुदा के साथ एक ताल्लुक कायम करती है। हदीसा फरमाया करते थे कि जहां आदमी का माल होता है वहीं उसका दिल अटका रहता है, तो अपना माल अल्लाह के पास रखा करो ताकि तुम्हारा दिल खुदा के पास अटका रहे। तो ये तकवे की वो बात है जिसको अंबिया की तालीमात से हमारे सामने आती हैं कि खैरात बाकी तमाम नेकियों की तरह भी हमारे अंदर तकवा, नेकी और खुदा के साथ ताल्लुक को पैदा करती है। उम्मीद है कि इस रमजान के महीने में जो सखावत का महीना है हम इस खूबी को भी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। इजाजत चाहता हूँ, वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।